हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज नारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जमा वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी गोपी जनावल्लभा यशोदानन्दन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारे जय यमुना तीरवन चारे जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज गोपी जनावल्लभा जय गुरुवर धारी जय गुरुवर धारी Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Guru Radhari Jaya Guru Radhari
పాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోదరక్షరి శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శిల భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ప్రభుపాదకి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి నామాచార శిల హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రేమ్ సె కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నితానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త బృందకి శ్రీ శ్రీ రాధా కృష్ణ గోప గోపీనాథ్ శ్యామ కుండ రాధా కుండ గిరి గోవర్ధన్ కి బ్రజ భూమి శ్రీ బృందావన ధామ్ కి పురుషోత్తమ క్షేత్ర శ్రీ జగన్నాథ్ పురి ధామ్ కి నవద్వీప్ మాయాపుర ధామ్ కి గంగా మాయ కి జమునా మాయ కి భక్తి దేవి కి కృష్ణ భక్తి ప్రదాయని శ్రీమతి తులసీ మహారాణికి కలియుగ పావన్ హరినామ సంకీర్తనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రకి శ్రీల ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేషనల్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి జయంతాయ్ గౌర ప్రేమానందే ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 12। को गृध्येत् पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्ट पपतेरपि ययाहमासुरं भावम् नीतोद्य विबुधेश्वर। को गृध्येत् पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्ट पपतेरपि ययाहमासुरं भावम् नीतोद्य विबुधेश्वर। को गृध्येत् पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्ट पपतेरपि ययाहमासुरं भावम् नीतोद्य विबुधेश्वर।
हरे कृष्णा। पीछे बहुत भक्त खड़े हैं, तो कृपया आप आगे आइए, भक्तों को जगह नहीं है पीछे, जितना हो सके आप आगे आ जाइए। हरे कृष्णा।
कह कौन वृद्धियत स्वीकार करेगा, पंडित विद्वान मनुष्य, लक्ष्मी ऐश्वर्य, त्रिपिष्ट पपते है अपि, यद्यपि मैं देवताओं का स्वामी हूँ, यया जिससे अहम मैं आसुरम आसुरी भावम विचार नीतः लाकर अद्य अब विबुधा देवताओं के जो सतोगुण युक्त हैं, ईश्वरः राजा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित हो उठा। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे ऐश्वर्य को धिक्कार है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना की है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे ईश्वर, मुझे न तो धन या ऐश्वर्य की कामना है, न मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हों जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे भक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यष्टि तथा समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में यही देख रहे हैं। समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल यह हुआ है कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य, जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है, ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। ऐसे समाज को व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी में भी से भी निम्न होता है, वे वर्ण संकर कहलाते हैं। और जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसा ही समाज में पाते हैं। अनुवाद: यदि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित हो उठा, भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे ऐश्वर्य को धिक्कार है। तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के इस प्रसंग में इंद्रदेव और वृत्रासुर के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, आज अभी सुबह में, दोपहर को और कल सुबह। तो तीन लेक्चर में प्रसंग चलेगा। तो इस संपूर्ण प्रसंग में जो मुख्य सिद्धांत इस पर चर्चा होगी वो ये कि भोग युक्त भावना से भक्ति और भोग मुक्त भावना से भक्ति करने में क्या अंतर है। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने की भावना और चेतना में बहुत अंतर होता है। और इस चेतना के विश्लेषण किए जाएं तो नाना प्रकार के स्तर होते हैं, और निकृष्ट निम्न स्तर से लेकर उत्कृष्ट श्रेष्ठतम स्तर के बीच नाना प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। साधक को चाहिए कि वह अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर लाने का प्रयास करे और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे महान शुद्ध ग्रंथों में वृत्रासुर जैसे महानुभावों के चरित्रों का वर्णन के माध्यम से हम सभी साधकों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब प्रेरणा प्राप्त करते हैं तब जाकर हम इस प्रयास को सफल करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में हम देखेंगे कि नाना प्रकार के ऐसे महान भक्तों के चरित्र का वर्णन आता है। तो वृत्रासुर शुद्ध प्रेमा भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है और इंद्रदेव भोग युक्त भक्ति के प्रतीक हैं। दोनों भक्त हैं, दोनों भगवान के अनुकूल हैं, लेकिन इंद्रदेव भक्ति के साथ साथ थोड़ा उनको डोस भी चाहिए भोग का बीच बीच में। बहुत ज्यादा भक्ति करने पर उनको टेंशन आ जाता है, तो इसके लिए ये इंद्रदेव इसके प्रतीक हैं। जो 24 घंटा भक्ति करने में बोर हो जाए वो इंद्र है। तो प्रसंग का आरंभ होता है कि इंद्रदेव बैठे हैं स्वर्ग लोक में, अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, सामने सुंदर सुंदर कामिनियां नृत्य कर रही हैं, इंद्रदेव सुरापान में पूरी तरह धूत हैं और ऐसी नशीले अवस्था में उस दृष्टि से इन सब अप्सराओं के नृत्य को देखकर पूरा आनंद में चूर हैं। तो किसी जगत में अय्याशी की कामना करे तो इंद्र जैसा अय्याश मिलना भी कठिन है, क्योंकि स्वर्ग लोक की जितनी भी भोग की सुविधाएं हैं वो सभी चूर चूर कर भरी हुई हैं स्वर्ग लोक में, और इंद्रदेव उसका भोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भक्त हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ साथ भोग भी किया जा सकता है, लेकिन वो अनुकूल नहीं है, शुद्ध भक्ति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं, इसलिए उनको कई ऐसी भोग की सुविधाएं दी जाती हैं। तो इंद्रदेव बैठकर इन नृत्य को देख रहे हैं और अचानक उसी समय उनके गुरु बृहस्पति जी प्रवेश करते हैं। तो इंद्रदेव बैठे हैं और देख रहे हैं स्टार प्लस चैनल, बहुत सारे नृत्य चल रहे हैं, फिल्म के गाने चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम हो चुका है और अब समय है उनके भोग का, टीवी देखने का टाइम है, और टीवी देखने के टाइम बिना बताए गुरु आ गए। तो बोले, यार ये तो तुम्हारे आने का टाइम नहीं है, ये तो मेरा टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, आप कैसे आ गए। घबरा जाते इंद्र, बोलते, यार बृहस्पति को अभी किसने बुलाया, ये तो हमारे चैनल देखने का टाइम है और वो मैं देख रहा हूं, उस समय प्रवेश कर दिए तो क्या किया जाए, उनको देखूंगा तो वो सामने आके बैठ जाएंगे, लेक्चर देना शुरू कर देंगे, फिर एक भागवत क्लास शुरू हो जाएगी, और एक बार शुरू होते तो कभी बंद ही नहीं होते, इसलिए अच्छा होगा उनकी ओर देखो ही मत, इस तरफ देखता रहूंगा तो थोड़ी देर बोर होकर चले जाएंगे, फिर बला टलेगी। ऐसा विचार करके इंद्रदेव ने ऐसा एक नाटक किया कि उन्होंने उसको देखा ही नहीं, और उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति की उपेक्षा कर दी। तो यह है मिश्रित भक्त की चेतना, कि जब भक्ति करने में हमारी चेतना मिश्रित होती है तो थोड़ा हम भक्ति करते हैं और जब तक सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तब तक माथा गर्म हो जाता है और लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, 4 घंटा कृष्णा 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 घुस गया दिमाग में, अब इसको दिमाग से निकालने के लिए कुछ करना है, और तब जाकर लोग नाना प्रकार के दूसरे कार्य आरंभ करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के पन्नों में इंद्र को इस तरह पिटता हुआ देखकर हम लोग खूब आनंद लेते हैं, कितना भोगी है बेचारा, देखो कितना निकृष्ट है, कितना पतित है, लेकिन इतना नहीं जानते कि हम लोग भी प्रतिदिन यही कर रहे हैं, इंद्र की चेतना में ही है, लेकिन हमको, हम एक दूसरे को कहेंगे कि तुम भोगी हो तो आप गुस्सा हो जाओगे, इसलिए इंद्र के नाम पे बिल फाड़ देते हैं, इंद्र भोगी है, तो हाँ बहुत बड़ा भोगी है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, बहुत बुरा है, सुधरना चाहिए उसको, सुधारो इंद्र को। लेकिन फिर भी इस तरह चर्चा करते करते मन में भावना आती है, वैसे मैं भी अलग नहीं हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए अभी। तो वास्तव में यह भोग मिश्रित भक्ति का लक्षण है कि थोड़ा भक्ति और भक्ति के बाद थोड़ा ब्रेक लेकर हम दूसरे कार्य करें, ये इंद्र इसमें लगा हुआ है बेचारा। और ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि जब बृहस्पति का प्रवेश होता है तो उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, पहला तात्पर्य प्रभुपाद देते हैं, सम टोटल ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट इज कंचन कामिनियन प्रतिष्ठा। अगर आपको भौतिक भोग क्या है उसका मूल तत्व समझना है तो कंचन कामिनी और प्रतिष्ठा, धन स्त्री का संग और प्रतिष्ठा, ये 3 प्राप्त हो जाए और नाना प्रकार से अय्याशी के साधन जुटा लें तो बस ये भौतिक भोग है और कुछ नहीं। तो इसलिए इंद्र के पास ये सब सुविधाएं थीं और इसलिए उसका ध्यान भटकना स्वाभाविक था। 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत में उपमा आती है कि यदि कोई व्यक्ति बैठकर अपना टीवी देख रहा है और टीवी देखते देखते अचानक बगल में से कोई सांप आके बैठ जाए, कोबरा भयंकर विषधर भुजंग, और आकर देखने लगे टीवी को नहीं आपको, तो फिर क्या आप उसी चेतना के साथ टीवी देख सकते हो क्या? सामने टीवी है, साइड में बहुत बड़ा ये सर्प है, देख रहा है आपको गौर से, आपके हाथ में रिमोट है, रिमोट से केवल आप चैनल बदल सकते हो, रिमोट को लेकर आप सांप की ओर देख के ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको जो काम करना है वो करके ही जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भौतिक भोग में पूरी तरह तल्लीन है, लेकिन मृत्यु रूपी सर्प आकर गौर से हमको निरीक्षण कर रही है, वो हम देखते नहीं। इसलिए इंद्रदेव यहां पर भोग विलास में जुटे हुए हैं और इसलिए ये भौतिक भोग का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में उत्कृष्ट भक्त इस स्तर से उठना चाहते हैं और अपने भोग के इच्छा को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आए हैं। तो इसलिए यहां वर्णन आता है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन भौतिक भोग तो एक ऐसी सुविधा है जो कि हरे कृष्ण साधक फेल हो जाए तो उसको प्राप्त होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब भक्ति करते करते कोई फेल हो जाए और इस जीवन काल में भक्ति को समाप्त न कर पाए तो उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक के भोग विलास की सुविधा दी जाती है। सो मेटीरियल एंजॉयमेंट इज समथिंग विच इज गिवन टू फेल्ड हरे कृष्ण डिवोटी। तो इसलिए उदाहरण में देता हूं कि कोई स्कूल या कॉलेज हो और उसका विज्ञापन आए कि ये हमारा बहुत प्रतिष्ठाशाली स्कूल है, कॉलेज है, और इसकी विशेषता है कि जो फेल होगा उसको समर में स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा और वहां पर आप 2-3 महीने का टूर मारकर आ जाओ, ये हमारे कॉलेज की विशेषता है, सारे फेलियर्स को स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा। तो सोचो क्या लंबी लाइन लगेगी कॉलेज के सामने। तो वास्तव में जब हरे कृष्ण भक्त साधना करते करते विचलित हो जाता है, इंद्र तृप्ति के वशीभूत हो जाता है और उसके मन में इंद्र तृप्ति की भावना उठने लगती है तो जानता है कि कृष्ण ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। लेकिन क्या करें, इंद्रियों का वेग इतना प्रभावशाली है कि पूर्व काल के कुकृत्यों के कारण हमारी चेतना निकृष्ट स्तर पर खींची चली जाती है। तो इस तरह से व्यक्ति न चाहते हुए भी जब अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर इंद्र तृप्ति के कीचड़ में लौटने लगता है तो भगवान को बहुत करुणा आती है और भगवान कहते हैं, बेटा तू मेरा मंत्र जप रहा है, मेरा डिवोटी है, तो इस पृथ्वी लोक के बिल्कुल लो क्लास ऐश्वर्य में क्यों लगा हुआ है? पृथ्वी लोक में जो भौतिक ऐश्वर्य है बहुत लो स्टैंडर्ड है, मेरे डिवोटी को नंबर 1 मिलना चाहिए, इसलिए आप यहां पृथ्वी में नहीं स्वर्ग लोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जो ऐश्वर्य की सुविधा है, भोग की सुविधा है, वो बिल्कुल टॉप क्लास है, जा उधर जा। तो इसलिए भक्त को भगवान वहां भेजते हैं, क्यों? क्योंकि मन में इच्छा है भोग की। तो भगवान कहते हैं भोग की इच्छा ही है तो थर्ड क्लास भोग क्यों, डिवोटी मतलब फर्स्ट क्लास। इसलिए जो भोग की भी सुविधा है स्वर्ग लोक में फर्स्ट क्लास है, वहां जाओ और वहां जी भर के इच्छा पूरी करो और जब इच्छा पूरी हो जाए फिर पुनः लौट के आओ कहां, भारत में, जिससे कि फिर शांति से भक्ति कर सको। इसलिए ये भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक भोग विलास की सुविधा भक्ति के मार्ग से च्युत होने पर स्वर्ग लोक में दी जाती है, कोई महान बात नहीं है, कोई विशेष चीज नहीं है। तो हम भक्ति में आए हैं तो इन सब स्तरों से उठकर केवल शुद्ध भक्ति की कामना से। एक और दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग इस हरे कृष्ण आंदोलन में आए कैसे? अधिकांश लोग कृष्ण को खोजते हुए बहुत कम लोग आए हैं। तो कलयुग में अधिकतर लोग आते हैं, जैसे गीता में कहा है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ज्ञानी बहुत कम लोग आते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में, और अर्थार्थी धन को ढूंढते हुए तो कोई आता ही नहीं। हरे कृष्ण आंदोलन में नहीं आएगा वो, धन को ढूंढते हुए स्टॉक बाजार में जाएगा। और जिज्ञासु, थोड़े बहुत जिज्ञासु लोग भी होते हैं कि सब साधुओं को देखकर और हरे कृष्ण के चैंटिंग डांसिंग को देखकर कुछ जिज्ञासा करके आते हैं, वो भी विरले जी भी होते हैं। अधिकांश मात्रा में लोग आते हैं तो आर्तो अर्थात परेशान होकर, नाना प्रकार के दुखों से त्रस्त होकर हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दुखों का समाधान चाहते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। इसलिए कोई कह रहा था कलयुग में चार प्रकार के लोग आते हैं, आर्तो 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 और महाआर्तो, दुखी दुखी बहुत दुखी और बड़ो भयंकर दुखी, बुरी तरह से परेशान, यही चार प्रकार के लोग आते हैं। और दुख का अर्थ क्या है कि अपने भोग की जो योजनाएं थी वो नष्ट हो गई। तो जब भौतिक जगत में अपने भोग के सारे प्लान बुरी तरह से विध्वंस हो जाते हैं, तब हम लोग प्रश्न करने लगते हैं, ये जीवन क्या है, मैं कौन हूं, किसने मेरा प्लान बिगाड़ा, कृष्ण कौन है, नहीं पूछते हैं, मैंने सब जीवन भर का बढ़िया प्लान बनाया था, किसने बिगाड़ा, कौन है वो, तो कहते कृष्णा। अच्छा कौन है वो? तो ढूंढते हुए आते, खुन्नस में आते वास्तव में, किसने मेरा प्लान बिगाड़ा। वो प्रेम के साथ नहीं आते। और कुछ समय के पश्चात भक्ति करते करते वो जो अपनी क्लेश थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर क्योंकि क्लेश के कारण हम भोग नहीं कर पाते, और हरे कृष्ण के जप से धीरे धीरे क्लेश कम हो जाता है, और जब क्लेश कम हो जाता है फिर सत्वगुण आ जाता है, फिर इंद्रियों में शक्ति आ जाती है, फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, फिर लगता है अब मैं फिर भोग कर सकता हूं। तो भक्ति के कुछ वर्षों के बाद वो जो इनिशियल मोटिवेशन था भक्ति में आने का, क्लेश, वो चला जाता है। लेकिन भक्ति में जीवन भर स्थायी बनने के लिए कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना आवश्यक है। और अपन पहले लड़खड़ाते हुए आए यहां कृष्ण को खोजते हुए नहीं, तो यहां आ गए हैं, क्लेश भी नष्ट हो गया है और कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा भी नहीं है। तो ऐसे 3-4-5-6 बरस के बाद आदमी सोचने लगता है, मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये मैं कहां हूं। फिर से 5-6 वर्ष के बाद फिर प्रश्न पूछता, मैं कौन हूं। पहले दिन भी वही पूछा, 5-6 वर्ष के बाद फिर वही प्रश्न आया, क्यों? क्योंकि कृष्ण को खोजते हुए मैं आया ही नहीं हूं यहां पर। मोबाइल में चल रही गाड़ी फुल स्पीड पर और अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और धड़ाम से नीचे गिर गया, पैर से खून निकलने लगा, सामने कपड़े की दुकान है तो दुकानदार कृपा करके अंदर ले लेता है और मलम पट्टी कर देता है। तो एक्सीडेंट कहां हुआ? कपड़े के दुकान के सामने। तो मैं कपड़े के दुकान के अंदर गया हूं क्यों? कपड़ा खरीदने? नहीं, अपने पैर में कपड़ा लगाने, मलम पट्टी करने। तो जब वो हो गया, रक्तपात समाप्त हो गया, उसके बाद वो पूछेगा, कपड़ा दूं क्या? कपड़ा, कपड़े का क्या कनेक्शन है मेरा, ये तो मैं खून बंद करने के लिए आया था, हो गया मैं चला। तो वैसे ही हम लोग गिरते पटकते अचानक चलते चलते आ गए, और किसी ने बीच में हरे कृष्ण डिवोटी ने किताब बांटते बांटते या कुछ प्रवचन करते करते टंगड़ी अड़ा दी और हम लोग गिर गए। गिरे, देखा क्या है, हरे कृष्ण मंदिर, अच्छा चलो यहां पर कुछ मलम पट्टी करते हैं। तो कुछ साल मलम पट्टी हो गया और सारा रक्तपात समाप्त हो गया, फिर सोचने लगते, बोर हो रहा हूं मैं, चैलेंज नहीं मिल रहा है, एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, क्या बात है, लाइफ क्या है, कृष्णा कौन है, डिवोटी लोग ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं। 50 प्रश्न कुछ वर्ष के बाद निकलते हैं, क्यों? क्योंकि पहले ही मैं कृष्ण को खोजते हुए आया नहीं, दूसरे किसी कारण से आ गया। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे समझने लगा क्या है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये संबंध ज्ञान को स्थापित करना बहुत आवश्यक है। और संबंध ज्ञान का अर्थ है कि कृष्ण के साथ संबंध, और श्रवण और कीर्तन के आधार पर यह संबंध ज्ञान स्थापित होता है। और जब संबंध ज्ञान वीक होता है, शिथिल पड़ता है, तब व्यक्ति पूरे जीवन भर पूरे उत्साह के साथ भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए वो क्लेश समाप्त होने के पश्चात फिर वो भोग की भावना उठती है, और केवल अब स्थान बदल गया है, भावना वही है, तो अब भक्तों के संग में फिर वो भोग करने के नाना प्रकार के उपाय ढूंढने लगता है। इसलिए निरंतर भक्तों के संग में गीता भागवत का श्रवण करके कृष्ण के प्रति प्रेम या आकर्षण जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा वो आरंभ में जो भक्ति करने के लिए प्रेरणा थी, वो यदि कृष्ण से संबंधित नहीं है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की नहीं है, तो अधिक दिन तक स्थायी नहीं रहेगी। इसलिए यहां पर इंद्रदेव का यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्रदेव ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में भोग को प्रधान मानकर चल रहे हैं और बाकी अन्य सभी कार्यों को भोग से संबंध में ही करते हैं। तो किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी, भगवान ने इस जगत का निर्माण क्यों किया? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, भोग के लिए। और ये बहुत प्रसन्न हो गया, हंसने लगा जोर जोर से। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे नहीं, कृष्ण के, भगवान के भोग के लिए। वही एक भोक्ता है और बाकी सब उनके सेवक हैं। तो ये प्रधानभूत है, और इसलिए यहां पर जैसे ही बृहस्पति प्रवेश किए हैं, क्योंकि इंद्र का मन भोग विलास में लीन है, इसलिए उन्होंने बृहस्पति अपने गुरु की उपेक्षा कर दी। अच्छा, आगे क्या होता है? बृहस्पति जी के प्रति अपराध हो गया, तो बृहस्पति जी क्या करते हैं, न तो उनको कुछ आसन दिया जाता है, न इंद्रदेव उठते हैं, न नमन का कोई चिन्ह प्रकट करते हैं, तो बृहस्पति जी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। तो इसलिए इसका सिद्धांत यह है कि महान भक्तों का, संतों का उचित शिष्टाचार से युक्त स्वागत करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत है। और यदि किसी कारणवश या जानकर भी किसी महान संत की इस तरह से अवहेलना की जाए, तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो वैदिक शिष्टाचार के अनुसार इस तरह उचित स्वागत, सत्कार, आवभगत करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए वर्णन ये आ रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में, द मूड ऑफ एंजॉयमेंट कैरीज द सीड ऑफ ऑफेंस। जो भोग की प्रवृत्ति है, उसके अंदर अपराध की वृत्ति छिपी रहती है। द मूड ऑफ एंजॉयमेंट कैरीज द सीड ऑफ ऑफेंस। तो इसलिए भोग की प्रवृत्ति के साथ हम भक्ति करते रहेंगे तो बहुत खतरा है कि कभी भी किसी भी क्षण कोई भी हमारे भोग में बाधा बने, उसके प्रति हम अपना क्रोध व्यक्त करेंगे, और इसलिए अपराध के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बृहस्पति का जो प्रतिकार है, बृहस्पति जी की जो प्रतिक्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति जी चुपचाप देखते रहे, सहन करते रहे, और फिर चले गए। वहां खड़े होकर उन्होंने श्राप नहीं दिया। बृहस्पति जी के पास इतनी शक्ति थी कि एक क्षण भर में वो इंद्रदेव को भस्मीभूत कर सकते थे, लेकिन बृहस्पति ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप वहां से चले गए। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि महान संतों का लक्षण होता है कि वो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप पर किए गए नाना प्रकार के अत्याचार, अपराध इत्यादि को शांतिपूर्वक सहन करते हैं और उसका प्रतिकार नहीं लेते। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति। महान भक्तों का लक्षण क्या है कि व्यक्तिगत रूप पर किए गए नाना प्रकार के अपराधों को वो सहन करते हैं, और कृष्ण और कृष्ण के मिशन के प्रति किए गए अपराध को तनिक मात्र सहन नहीं करते, और पूरे प्रचंड वेग के साथ ऐसे लोगों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के प्रति भी कुछ अपराध किए गए 1970 में, श्री प्रभुपाद को रथ यात्रा के कार्ट पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनके ग्रंथों पर उनका नाम ठीक तरह से छापा नहीं गया, उनके कुछ चिट्ठियों को ठीक तरह से उनको दिया नहीं गया, हस्ताक्षेप किया गया। तो लीलामृत में एक पूरा अध्याय है, उसका नाम है थ्रेट अगेंस्ट इस्कॉन, और उसमें वर्णन आता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के आरंभ होने के 4 वर्ष के भीतर संस्थापक आचार्य प्रभुपाद के प्रति भी कुछ अपराध होने लगे, और श्रील प्रभुपाद उस समय कुछ विचलित हुए ये देखकर कि उनकी उनके प्रति अपराध हो रहे हैं और उनके कुछ शिष्य ही इस तरह अपराध कर रहे हैं। तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि कोई हमारे प्रति अपराध करता है या हमको लगता है कि कोई अपराध कर रहा है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने इन 3-4 भक्तों को संन्यास दिया जो जानते थे कि अपराध कर रहे हैं, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया और चारों दिशाओं में प्रचार करने का आदेश दिया, इस आशा के साथ कि प्रचार की शक्ति से महाप्रभु की कृपा का प्रसारण होगा, और जब महाप्रभु की अहेतु की कृपा का संचार उनके रगों में होगा तो उनके हृदय के भीतर जो अपराध की भावना है वो नष्ट होगी। इस तरह की चेतना से प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया, और उसके पश्चात प्रभुपाद अमेरिका छोड़कर जापान चले गए, और वहां पर उनको समाचार मिला कि यही 3-4 लोग संन्यास लेने के पश्चात भी न्यू वृंदावन में आकर जन्माष्टमी के समय इस तरह उद्घोषणा कर रहे थे, विज्ञापन कर रहे थे कि प्रभुपाद भगवान है, और ये इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा खतरा था मायावाद का प्रचार। और उस समय प्रभुपाद बड़े विकराल स्वरूप धारण करके नरसिंह के रूप में आकर उन चारों लोगों को इस्कॉन से निकाल दिया। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने अपने निजी उदाहरण से प्रदर्शित किया कि व्यक्तिगत रूप पर यदि कोई मतभेद हो तो वह सहन करना चाहिए, लेकिन वह सामूहिक रूप पर हो और भक्तों के संघ में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा बने या मिशन में किसी प्रकार से बाधा बने तो तुरंत हमें कुछ उसका एक्शन लेना चाहिए। तो यहां बृहस्पति ने देखा कि चलो इन्होंने मेरे प्रति कुछ इस तरह अपराध किया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सहन करता हूं, ऐसा कहके बृहस्पति वहां से चले गए। जैसे ही बृहस्पति गए, इंद्रदेव ने देखा कि उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, और असुरों को इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह इंद्रदेव ने कुछ अपराध किया है, तो असुरों का पलड़ा भारी हुआ, उनका उत्साह प्रबल हुआ और वो अपनी संपूर्ण शक्ति को जुटाकर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिए, धावा बोल दिए। तो असुर लोगों का ये 24 आवर्स ड्यूटी रहता है देखते रहना कि देवताओं के क्या चल रहा है वहां पर। तो पता पड़ा कि देवताओं के यहां इस तरह की समस्या हो गई, असुरों ने कहा यही अवसर है, मौका ताड़कर उन्होंने यूं आक्रमण किया कि देवता उस समय अपने अपराध के वशीभूत पूरी तरह उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी और उनका उत्साह भी शिथिल पड़ गया था, और इसलिए असुरों के वेग को वो किसी प्रकार से रोक नहीं पाए और परास्त हो गए। तो यहां इंद्रदेव उस समय विचार करने लगे कि ये मैंने अपराध किया अपने गुरु बृहस्पति के प्रति, यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये अपराध का कारण क्या है इसका मैं विश्लेषण करता हूं। और ऐसा इंद्रदेव विचार करने लगे कि ये मेरे अपराध का कारण क्या था, और इंद्रदेव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उस समय विचार करते हैं कि 4 कारण हैं कि मैंने अपराध किया। और पहला वो कहते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य और संपदा जब इतना अधिक मात्रा में मिलता है किसी व्यक्ति को तो उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं प्राइड, फॉल्स प्राइड, प्राइड इन मटेरियल ऑपुलेंस, फर्स्ट कॉज ऑफ ऑफेंस। तो इसलिए आज का जो श्लोक है वो उससे संबंधित है, को गृध्ये पंडितो लक्ष्मीन त्रिपिष्ट पपतेर अपि, तीनों लोकों में नाना प्रकार के जो भौतिक ऐश्वर्य संभव हैं, वो यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसकी बुद्धि पर क्या असर पड़ता है, उसके अहंकार का क्या होता है। ओ गृध्येत पंडितो लक्ष्मीन, तो इंद्रदेव अपराध करने के बाद पश्चाताप करते हुए इस श्लोक का विवरण कर रहे हैं कि कौन पंडित बुद्धिमान व्यक्ति है जो इतना मूर्ख होगा कि अपने जीवन में भौतिक ऐश्वर्य की कामना करेगा। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि जितना पगार मिलता है उससे संतुष्ट रहो। कुछ इस तरह से इंद्रदेव का साक्षात्कार है अपने लिए। कि कभी जितना धन संपत्ति मिल जाए उससे संतुष्ट रहो, और कमाने के पीछे जाओगे तो मैंने जैसे बृहस्पति के प्रति अपराध किया आप लोग भी कर बैठोगे, और उसके बाद नाना प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां जो हमारे ऊपर तो बाहर से आक्रमण करती हैं लेकिन कलयुग में तो अंदर ही बैठी हैं, तो उनका आक्रमण होगा और विनाश निश्चित है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसलिए सबसे पहले कह रहे हैं ये अहंकार का प्रभाव, मिथ्या अहंकार का प्रभाव ये बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत आवश्यक है समझना, भौतिक ऐश्वर्य में अहंकार। तो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना के समय भी इस तरह का नियम बनाया कि कोई भी जो मंदिर उस समय तैयार हो रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा जैसे ही धन आता है तुरंत उसको किताब वितरण में, किताब के प्रोडक्शन में लगाओ, और अधिक समय तक रखोगे तो भी समस्या हो जाएगी। आध्यात्मिक संस्था चलाने में भी प्रभुपाद ने इस तरह कहा। और प्रभुपाद एक बार अमेरिका से दिल्ली आए और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, और उस समय तेजस प्रभु और बाकी कुछ भक्त प्रभुपाद को लेने के लिए एयरपोर्ट पे गए, और तेजस प्रभु अपने हाथ में हार लेके प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को हार पहनाने ही वाले थे। प्रभुपाद ने कहा स्टॉप, रुको। वो बिल्कुल उनके सर के पास जैसा हार लेके खड़े हो गए। प्रभुपाद ने कहा जो भी पैसा मैंने भेजा था वो सब बुक फंड में ट्रांसफर किया कि नहीं। तो बिल्कुल अचानक विचार करने लगे, ये अभी एयरपोर्ट में मैं स्वागत करने आया हूं, हार लगाने वाला हूं, ये कौन सा अकाउंट का प्रश्न पूछ रहे। तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद, दो दिन पहले हमने सब ट्रांसफर कर दिया, बुक फंड में सब चला गया। प्रभुपाद ने विचार किया, कहा ठीक है हार लगाओ। फिर उन्होंने हार डाला। तो बोले प्रभुपाद का मन इतना तेज था और वो इतना विचार करते थे, एयरपोर्ट से उतरे हैं और इतना लंबा फ्लाइट के बाद आदमी का दिमाग घूमता रहता है, थका हुआ रहता है, कोई विचार भी नहीं कर पाता, सोने की इच्छा होती है, और ऐसी अवस्था में प्रभुपाद का दिमाग अभी भी बराबर है कि वो बुक फंड का पैसा गया कि नहीं वहां पे। तो प्रभुपाद ने विचार किया और कई बार चेतावनी भी दी कि धन के साथ जब हम संबंध रखें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए प्राइड या अहंकार जो इंद्रदेव अपना अनुभव बतला रहे हैं। तो आगे कहते हैं इससे संबंधित कि जब अहंकार होता है तो इसका दूसरा परिणाम होता है कि विवेक शक्ति का नाश, लैक ऑफ इंटेलिजेंस और द डिस्क्रिमिनेशन इज लॉस्ट, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो विवेकहीनता, तो विवेक शक्ति का अर्थ क्या है, भली भांति हम समझें कि ये उचित है या अनुचित है, ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब ऐश्वर्य बढ़ता है तो व्यक्ति को लगने लगता है कि चलो मैं तो अब ऐश्वर्यशाली हो गया और जो कुछ चाहिए था नियंत्रण करने के लिए वो मेरे पास है, तो अच्छा और बुरा की इतना चिंता क्यों करनी, क्योंकि जब दूसरों को मैं चुप कर सकता हूं और अपनी शक्ति से दबा सकता हूं तो फिर ठीक है, इसके आधार पर ही जीवन जीते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है समझना कि विवेकहीनता। और वैसे भक्ति में भी अब इंद्र के समान हम लोग तो साधु हैं तो इंद्र के समान ऐश्वर्य तो आएगा नहीं। तो हम लोग जब यहां पर भक्ति कर रहे हैं तो कुछ वर्षों के भक्ति के पश्चात कुछ कई प्रकार के ऐसे हमारे अंदर ऐश्वर्य आ जाते हैं, तो हम लोग प्रचार करते हैं तो जो हम कहते हैं लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं, और नाना प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और इसके आधार पर यदि मैं विचार करने लगूं कि देखो अभी तो मैं ऐश्वर्यशाली हो गया, पहले नया नया भक्त था तो जो दूसरे बोलते थे वो करना पड़ता था, अब वो दिन गए, वो दिन चले गए, अब मैं कुछ उठ गया हूं, पहले पतित था अब पावन हो गया हूं, अब दूसरों को भी पावन कर रहा हूं, इसलिए इतने ऐश्वर्य आ गए तो ये सभी नियम इतने कड़की से पालन करने की क्या आवश्यकता है, ये तो नए लोगों के लिए है, न्यूफाइट लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, अब हम कुछ उठ गए हैं। तो इस तरह विचार यदि करने लगे तो फिर धीरे धीरे ये विवेकहीनता वहीं पाती है। और कोई नया डिवोटी भ्रमित होकर पूछे, अरे लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, हमारे लिए नहीं है ये सब तुम जैसों के लिए है, तो ऐसे मन में भावना आ सकती है। और सूक्ष्म भाव से हम अपने आचरण में कुछ परिवर्तन लाएं, लेकिन धीरे धीरे करके वो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस या डिस्क्रिमिनेशन, तो विवेकहीनता का नाश ये भी एक बहुत समस्या है। और तीसरा, जब विवेकहीनता होती है तो हम सूक्ष्म धार्मिक सिद्धांतों को समझ नहीं पाते, इग्नोरेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, मैंने सटल पॉइंट्स इन द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो जो धार्मिक सिद्धांत हैं, क्या पालन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उचित शिष्टाचार है क्या नहीं है, ये सब हम कुछ समय के बाद भूलने लगते हैं। और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अहंकार से, अहंकार के मत में पूरी तरह चूर, दूसरों से आदर सम्मान स्वीकार करता है। और जब हम दूसरों से आदर सम्मान स्वीकार करने लगते हैं तो दूसरों के प्रति आदर और सम्मान कम देने लगते हैं, और धीरे धीरे वो विवेकहीनता आने लगती है कि हम किसके प्रति आदर दें किसके प्रति नहीं दें, कौन से सिद्धांतों का पालन करें नहीं करें। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। और कई बार ऐसा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति विचार करने लगता है कि वास्तव में मैं तो बहुत प्रगतिशाली हूं और मुझे इस जगत के हर प्रकार के विषयों का ज्ञान है। तो कई बार ऐसे धनवान लोग प्रभुपाद के पास आकर भी आर्ग्यूमेंट करते थे धर्म के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, ये विचार करके कि मैं तो धनवान हूं तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूं और शास्त्र भी जानता हूं, इनसे अच्छा जानता हूं। एक व्यक्ति इसी तरह बहुत बड़े सेठ जी आके प्रभुपाद से कहने लगे, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में कीर्तन क्यों कह रहे हो, हरे कृष्ण शुड नॉट बी चैंटेड लाउडली, इट शुड बी चैंटेड मेंटली, मानसिक रूप से करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, कौन से आधार पर कह रहे हो, अरे मैं सब जानता हूं, हमारे घर में कितने पंडित लोग आके कथा करते थे, हम लोग सब जानते हैं। तो इस तरह उनके मन में भावना ने प्रभुपाद के साथ आर्ग्यूमेंट किए जा रहे एक घंटे तक। प्रभुपाद उनको महाप्रभु का बता रहे हैं, शास्त्रों का बता रहे हैं कि उच्चारण करना चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं, बोले मानसिक रूप से, नाम मतलब मानसिक। तो अंत में प्रभुपाद ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब ये मानता नहीं, चलो लाके प्रसाद बांटो, बोले सबको प्रसाद बांटो लेकिन इस आदमी को मत देना। बोले क्या हो गया भाई, बोले ही विल ईट मेंटली, ये मानसिक रूप से खाएगा, उसको प्रसाद मत दो। बोला नहीं मुझे भूख लगी है, अब क्या हो गया तुम्हारा मेंटल केस। तो कई लोग ऐसे प्रभुपाद के पास आते थे, स्वयं कोई सन्यासी साधु या शिक्षित नहीं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत ऐश्वर्य है, तो जब कुछ ऐश्वर्य आता है तो हमको लगता है कि हम किसी भी विषय पर किसी के साथ बहस कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जब महाप्रभु रामानंद राय के साथ भेंट करते हैं तो उस समय महाप्रभु अपने आप को बहुत विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु को ए मायावादी आमी तो सन्यासी, कि मैं मायावादी सन्यासी हूं, इस तरह से कह रहे हैं। भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी, मैं भक्ति तत्व क्या है नहीं जानता हूं, मायावाद के सागर में निमग्न हूं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी साधु के पास जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री के अहंकार से मत होकर प्रस्तुत करे तो वास्तव में वो किसकी अपेक्षा कर रहा है, सम्मान की अपेक्षा कर रहा है। तो साधु के पास जा रहा है अपने गर्वीला होकर कि मैं धनवान हूं, ऐश्वर्यशाली हूं, शिक्षित हूं, सुंदर हूं, बड़े परिवार का हूं, सम्मान दो। तो साधु भी उनको जो चाहिए देगा, सम्मान देगा, लेकिन कृष्ण नहीं देगा। तो यदि साधु के पास सम्मान की कामना से जाएं तो साधु सम्मान देंगे, लेकिन यदि साधु से कृष्ण चाहिए तो विनम्रता पूर्वक नम्र होकर जाना पड़ता है और झुकना पड़ता है। तो जब साधु के सामने नम्र होंगे तब कृष्ण मिलेगा, और साधु के सामने गर्व जताएंगे तो सम्मान मिलेगा। तो साधु के पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और साधु के प्रति अपराध करेंगे तो फिर अपराध का फल मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति को साधु के सामने जाकर साधु के आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को जानकर उसको सम्मानित करने का प्रयास करना चाहिए। साधु के पास भी ऐश्वर्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक दिव्य ऐश्वर्य हैं, कृष्ण भक्ति का ऐश्वर्य है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के सामने आकर भी अपने आप को भगवान नहीं बतला रहे, अपने आप को महान श्रेष्ठ सन्यासी ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए नहीं बतला रहे। हर प्रकार से वर्ण और आश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो महाप्रभु श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, सन्यासी हैं, ऐश्वर्यशाली बड़ा सुंदर देह है, आजानुलंबिता भुजौ, और नाना प्रकार से उनके अंदर सर्वगुण संपन्न है। लेकिन फिर भी जब रामानंद राय के सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं प्रभु को ये मायावादी, अमी तो सन्यासी, मैं मायावादी सन्यासी हूं, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी, भक्ति तत्व कुछ नहीं जानता आप मुझे दो। तो महाप्रभु अपने आचरण से बतला रहे हैं कि कैसे हम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो किस भावना में जाना चाहिए, क्योंकि अभी महाप्रभु की इच्छा है कि रामानंद राय कुछ कृष्ण भक्ति का ज्ञान दें, इसलिए उनके सामने इस तरह विनम्रता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो इस तरह सूक्ष्म धार्मिक सिद्धांत व्यक्ति समझ नहीं पाता। और चौथा वर्णन आता है, फोर्थ कॉज ऑफ ऑफेंस इज लैक ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का अभाव। कैरेक्टर का अर्थ क्या है? चरित्र। उसका अर्थ क्या है कि जब हम अकेले कोई कार्य करें जो कोई ना देखे उसको कहते हैं कैरेक्टर। अभी तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, लेकिन जब मैं अकेला हूं और कोई नहीं देख रहा तब मैं क्या करता हूं, वो वास्तव में मेरे चरित्र का एक प्रमाण है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हम सामाजिक दबाव में आकर कई कार्य करते हैं, और आधुनिक समाज में इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू अदर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू आर, दैट इज मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी यही हमको सिखाया जाता है कि नहीं, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, अर्थात कैसे आप दूसरे को बताओ तुम क्या हो और तुम्हारे अंदर क्या नहीं है उसको कैसे छुपाओ, यही जो मेन फोकस यही रहता है। तो कहीं पर यह नहीं बतलाया जाता कि वास्तव में आपके अंदर असली गुण उत्पन्न करो। तो चरित्र का अर्थ है कि वास्तव में आप क्या हो। तो जब भक्ति में हमारे अंदर इस तरह प्रामाणिक गुण नहीं होते और हम केवल दूसरों को दिखाने के प्रयास में ही अपने भक्ति का जीवन निकाल देते हैं, तो उसमें कई बार हमारे पर्दाफाश होने का भय होता है। तो जैसे अभी इंद्र है तो अपने दिन के काफी समय वो भक्ति कर रहा है, लेकिन अपने दिन के दूसरे समय वो कुछ और कर रहा है, और उस समय जब बृहस्पति अंदर प्रवेश कर दिए तो पर्दाफाश हो गया, तो उसको बचाव करने गए तो अपराध हो गया। तो इसलिए यदि वास्तविकता हृदय के अंदर प्रामाणिक रूप से भक्ति करने की नहीं है तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो हम बचाव करने का प्रयास करेंगे और उस बचाव करने के प्रयास में अपराध करेंगे। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो जब तक ऑनेस्टी या प्रामाणिक इच्छा के साथ हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक कभी ना कभी अपराध का भय होगा ही। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो इसलिए ये चार जो कारण बताए जा रहे हैं अपराध करने के, तो अब प्रभुपाद जी यहां पे वर्णन कर रहे हैं कि अमेरिका के विषय में कि किस तरह से यहां पर अमेरिकी समाज में इस पर ज्यादा अधिक बल दिया गया कि कैसे आप अपने आप को प्रस्तुत करो, और धीरे धीरे वो समाज खोखला होता चला गया। तो आदर्श चरित्र के आधार पर हमको भक्ति करना है। वी शुड ट्राई टू बी ऑनेस्ट सिंसियर डिवोटीज एंड नॉट जस्ट टू ट्राई टू प्रेजेंट आवर सेल्व्स एज समथिंग विच वी आर नॉट। तो ये कैरेक्टर है। तो अमेरिका में हाल ही में मैं गया था तो समाज की बड़ी दुर्दशा है, और मजे की बात यह है कि अमेरिका भर में जो जेल के कैदी हैं, जो जेल में कैदी होते हैं, उन लोगों का ड्रेस क्या होता है? सैफरन कुर्ता और सैफरन पजामा। तो अगर अमेरिका में आप सैफरन पहन के घूमो तो दूर दूर से लोगों को लगता है कि कैदी जा रहे हैं। तो मैं कॉलेज कैंपस में एक जा रहा था तो किसी डिवोटी ने कहा देखो वो सैफरन जा रहा है, तो मैंने कहा कौन है? बोला कैदी है वो। इसलिए रखते हैं कि अगर वो बाय चांस पुलिस के चंगुल से छूट के भागे तो दूर दूर से दिख जाता है सैफरन। इस तरह तो समाज में बहुत अच्छी तरह से वहां पर सुनियोजित ढंग से कार्य किया है, लेकिन क्योंकि वहां पर चरित्र पर पूरा बल नहीं दिया गया इसलिए मानसिक संताप बहुत है। सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है साइकेट्रिस्ट लोगों का, और यहां तक कि वहां पर कुत्तों के लिए भी साइकेट्रिस्ट है, डॉग साइकेट्रिस्ट। क्यों? अरे कुत्ते भौंकते रहते तो जानकारी के लिए कि क्यों भौंक रहा है वो, उसको शांत करने के लिए अलग अलग टेक्निक निकाला है। कुत्ते को प्रेम से बिठाकर उससे प्रश्न करते, क्या बात है बेटा क्यों भौंक रहा है तू, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, शांत कैसे होगा? और इतना वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ किया है। पूरे अमेरिका में कहीं पर भी आपातकालीन परिस्थिति आए 911 डायल करो, 2 मिनट के अंदर अंदर पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तीनों पहुंच जाएगा कहीं पर भी हो। तो पूरा चैलेंज है, कहीं पर भी 911 आप कहीं से डायल करो विद इन 2 मिनट्स ये तीनों बातें आ जाएंगी आपके सामने। और गलती से कर दिया तो मर गए, आप भगा नहीं सकते उनको, बोले आपने किया है हम आ गए। तो छोटे छोटे बच्चों को बचपन से स्कूल में शिक्षा दी जाती है कि बेटा घर पे माता पिता आवाज उठाएं और यदि हाथ भी इस तरह दिखाएं तो 911 डायल करना। मजाक नहीं कर रहा हूं, असली बात बता रहा हूं, जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए। जो अमेरिका में अपना बसेरा बनाना चाहते हैं वो समझ जाए कि वहां पर समस्याएं हैं, कि आप फ्री हैंड वहां पर बच्चों को मारपीट नहीं कर सकते। बचपन से कूट कूट के सिखाया जाता है, ABC के पहले ये सिखाया जाता है कि यदि माँ या पिताजी ऐसे भी हाथ दिखाए 911 मार देना। और पुलिस आके बच्चे को उठा के लेके जाती है और माता पिता के हाथ में हवेला नहीं करती। कई कई घरों से बच्चे को उठा के लेके जाते हैं और माता पिता को सूचना देते हैं कि आपके अंदर योग्यता नहीं है अपने बच्चों को बड़े करने की, इसलिए हम ये बच्चे को दूसरे परिवार में दे रहे बाय फोर्स। एक अपना डिवोटी है इंडियन, उसके हाथ से उसका बच्चा गिर गया बाय चांस, तो डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर ने पट्टी उट्टी कर दिया, बाद में पूछा ये चोट कैसे आई, तो उसने कहा वो क्या मैं कुछ खेल रहा था या कुछ हो रहा था गिर गया अचानक। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो जैसे ही डिवोटी घर पे आया, पुलिस आ गई घर पे। तो बोले हमको डॉक्टर ने फोन किया कि तुम्हारे अंदर बच्चों को बड़े करने की औकात नहीं है, आपके हाथ से बच्चा गिर गया, इसलिए आप बहुत रिस्की फादर हो, आपके साथ बच्चे को नहीं रख सकते। उठा के ले गए बच्चे को, एक साल तक वो पुलिस का चक्कर लगा रहा था अपने बच्चे को वापस घर में लाने के लिए। सोचो क्या अवस्था है, परेशान हो गया। और दूसरा एक तो उसको तो बचपन से माता पिता ने खूब मारपीट करके बड़ा किया था, तो उसको लगा कि बच्चों को बड़ा करना है तो यही एक तरीका है। और अपने चाणक्य पंडित भी कहते हैं ताड़ने बहुओ गुणा, लेकिन वहां क्या करें, हाथ भी नहीं उठा सकते। और बच्चा इतना उधम मचाएगा, 3-4 साल का बच्चा है, लेकिन चिल्लाएगा जोर जोर से, बातें करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली उसको पकड़ के भारत में लेके आए, और जैसे ही प्लेन बॉम्बे एयरपोर्ट में लैंड हुआ तो आप लोग बाकी समझ ही गए बहुत महाप्रसाद दिया जो महाप्रसाद अमेरिका में नहीं दे पाया घबरा कर। तो बोले कि क्या करे, समाज ही अलग है, कुछ समझ में नहीं आता, अपने दिमाग में बैठता नहीं। मैं अपने कजिन के यहाँ गया, हंटिंगटन बीच लॉस एंजलिस में रहती है, तो पहली बार उनके बच्चों को मैं देख रहा था, कजिन सिस्टर है, तो उनके घर पे मैं जैसे गया, उनके दो बच्चे बाहर निकले और मेरे को देख के चिल्लाने लगे, चाइनीज चाइनीज चाइनीज। मैं बोला अरे क्या हो गया, मेरे को देख के चाइनीज चाइनीज क्यों चिल्ला रहे। तो मैंने कहा मैं तमिल हूं यार, तुम्हारा मैं मामा हूं। बोलो नहीं चाइनीज चाइनीज। फिर एक बच्चा चढ़ गया मेरे ऊपर और मेरा शिखा पकड़ लिया, बोला दिस इज चाइनीज। तो मैं बोले क्यों चिल्ला रहे, ऐसा क्या है, इनको क्या प्रशिक्षण दिया आपने। तो बोले नहीं, टीवी पे एक मार्शल आर्ट्स का प्रोग्राम आता है और उसमें वो मार्शल आर्ट्स के जो लोग हैं वो सब सैफरन पहन के शेव्ड हेड होके फिर वो लोग फाइटिंग करते हैं, सब चाइनीज फिल्म है वो। तो उसको देख के उनको लगा जो भी शेव्ड हेड है सैफरन है वो चाइनीज है। तो फिर पूरा वो आधा घंटे तक चाइनीज चाइनीज मंत्र लगा रहा था, उसको बाहर भेज दिया फिर खेलने के लिए। तो वास्तव में वहां कई समस्याएं हैं जो यहां रहकर व्यक्ति समझ नहीं पाते। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि उचित चरित्र के निर्माण पर यदि ध्यान दिया जाए और कृष्ण भावना भावित जीवन यदि हम जीने का प्रयास करेंगे तब जाकर हृदय की समस्याओं का समाधान होगा और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। तो इसलिए अब यहां पर इंद्रदेव ने जो अपराध किया उसका परिणाम यह हुआ कि वो लोग बहुत परेशान हुए, बहुत उनके मन में क्लेश आया और वो अब ऐसी अवस्था में बहुत बुरी तरह त्रस्त होकर भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि अब परास्त हो गए, हार गए हैं। और मुख्य बात यह कि चारों दिशाओं में भाग रहे हैं ढूंढते हुए किसको, बृहस्पति को, लेकिन बृहस्पति मिल नहीं रहे उनको, बृहस्पति का दर्शन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अब इंद्रदेव कहते हैं कि चलो अपराध तो मैंने किया लेकिन अपराध का मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अथाहम अमराचार्यम अगाध धिषणम महत प्रसादयिष्ये निशथ शीर्षनात चरणार्चनम। प्रसादयिष्ये निशठ, निशठ बिना शठ के मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो अपराध तो हो गया लेकिन यदि हमसे किसी के प्रति अपराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित करने का भी मार्ग होता है। और वो मार्ग क्या यहां बता रहे हैं, अथाहम अमराचार्यम अगाध धिषणम प्रसाद ईश्य, संतुष्ट करने का प्रयास करो उस व्यक्ति को जिसके प्रति आपने अपराध किया। कैसे, निशठ बिना शठ के, विदाउट ड्यूप्लिसिटी अर्थात विद सिंप्लिसिटी, सरल हृदय के साथ। तो आपका आपकी चेतना पारदर्शी होनी चाहिए और ऐसे पारदर्शी चेतना के साथ यदि आप उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, शीर्षना तद चरणार्चनम, और फिर उस व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास करोगे। सो सबमिट योर सेल्फ फेथफुली विथ सिंप्लिसिटी एंड सर्विस एटीट्यूड। तो इस तरह से आप सेवा करोगे तब जाकर अपराध का परिणाम नष्ट होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिंप्लिसिटी। तो शिष्य के ये गुण होने चाहिए, आदर्श शिष्य के। तो इसमें से मुख्य क्या है? सिंप्लिसिटी या सरलता। हनुमान जी के अंदर यह विद्यमान था। हनुमान जी सरल हृदय के थे और प्रभु रामचंद्र जी को बहुत प्रिय थे इसी कारणवश। तो केवल जानकी जी के मांग में सिंदूर डालते हुए देखकर हनुमान जी के मन में भावना आई कि इतने से सिंदूर से यदि रामचंद्र जी संतुष्ट हो सकते हैं तो पूरे शरीर पर सिंदूर डालूं तो कितना आनंद आएगा। तो इसलिए पूरा शरीर उन्होंने सिंदूर से अभिषेक कर लिया और रामचंद्र जी के सामने आकर नृत्य करने लगे। और रामचंद्र जी देखे कौन कौन लाल बिल्कुल टमाटर की तरह कौन व्यक्ति कूद रहा है ऊपर नीचे। बोले कौन है ये? तो बोले पीछे से उनकी पूंछ देखकर बोले हनुमान जी। तो पूछा तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आपको संतुष्ट करने की इच्छा से ये मैं किया हूं। तो सामान्य व्यक्ति देखता है कि मैं कैसे दिखता हूं, समाज के लोग क्या कहेंगे और किस तरह से लोग मुझे देखेंगे, ये सब भावनाएं मन में आती हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में ये कोई भावना नहीं थी, पूरे सरल हृदय के थे। तो इसलिए रावण के विध्वंस के पश्चात जब संपूर्ण मानव सेना के साथ रामचंद्र जी नंदीग्राम में भरत महाराज से मिले तो भरत महाराज ने संपूर्ण सेना के लिए भव्य भोजन का आयोजन किया था। तो सबको भोजन परोसा गया और हनुमान जी उस समय सभी वानरों को पंगत में बिठाने थे, क्योंकि हनुमान जी को इंचार्ज बनाया गया कि वानरों को एक जगह बैठकर खाने की आदत नहीं है। तो जब तक आप उनको जबरदस्ती एक जगह बिठाने का प्रशिक्षण नहीं दो तब तक वो बैठेंगे नहीं। तो हनुमान जी ने सबको धमका के रखा था, बोले ये जंगल नहीं है, ये अयोध्या नगरी है, नंदीग्राम है, यहां महाराज लोग रहते हैं, थोड़ा अपना जो वानर प्रवृत्ति उसको दबा के रखना और जहां मैं आपको जगह अलॉट करूं वहीं बैठ के खाना, यहां वहां कूदना मत। वानरों का क्या है, दूसरे के प्लेट में अच्छा दिख दिया वहां छलांग मार के उसका ले लेंगे। कम से कम मनुष्यों के यहां ये प्रॉब्लम नहीं है प्रसाद सर्विस में, एक जगह बैठ गए तो दूसरे जगह छलांग नहीं लगा सकते। ये तो अच्छा लगा तो सीधा छलांग लगा के चौथे रो में मार देंगे छलांग, किसी के प्लेट से उठा लेंगे। तो हनुमान जी के डर से सब वानर अपने अपने जगह पे बैठ गए और भोजन लेना आरंभ किया। लेकिन तब तक हनुमान जी के बैठने के लिए जगह नहीं थी, पूरा सब जगह फुल हो गया और प्रसाद आरंभ होने वाला था। और रामचंद्र जी हनुमान जी को देखकर कहने लगे, अरे हनुमान तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अगले पंगत में बैठ जाऊंगा। तो रामचंद्र जी का, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे प्लेट में आ जाओ और हमारे प्लेट से आप, हमारे पत्तल में आप खाइए। तो उस समय जो केले का पत्ता था वो सब सबको दिया गया था। तो केले के पत्ते पर हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी कहने लगे, आप स्वामी हो मैं दास हूं, दास कैसे स्वामी के पत्तल से खा सकता है, यह संभव नहीं भगवान, मैं कुछ समय प्रतीक्षा करूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, निश्चिंत रहिए मैं इसके लिए कुछ व्यवस्था करता हूं। और रामचंद्र जी अपना दायां हाथ लिए और दाएं हस्त कमल से उन्होंने उस केले के पत्ते के बीच में एक लकीर खींच दी और लकीर खींचकर कहने लगे कि चलो पत्ते के इस भाग से मैं खाऊंगा, पत्ते के उस भाग से तुम खाना। और उस दिन से केले के पत्ते के बीच में लकीर है और रामचंद्र जी के हस्त कमल का चिन्ह है। तो फिर हनुमान जी को दूसरी तरफ बिठा दिया और कह दिया कि देखो अभी हम लोग दोनों एक हैं फिर भी अलग भी हैं। अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत का वहां पे स्थापना कर दिया कि जीव और भगवान एक हैं लेकिन फिर भी अलग भी हैं, पत्तल एक है लेकिन फिर भी अलग है। इसलिए मायावादियों को हराना हो, मायावादी दिख गया तो केले का पत्ता दिखा देना कि यार तुमसे आर्ग्यूमेंट भी कौन करेगा, ये देख ले, इसको देख के समझ जा कि तू कौन है, समय बर्बाद मत कर हमारा। तो वास्तव में ये सरलता रामचंद्र जी को बहुत प्रिय है और हनुमान जी की सरलता से वो इतने अभिभूत थे कि निरंतर हनुमान जी की सेवा करने का वो प्रयास करते थे। तो ये सिंप्लिसिटी बहुत आवश्यक है। और दूसरा है फेथफुलनेस या श्रद्धा। और भक्तों पर श्रद्धा होती है तब जाकर हम अपराध रहित सेवा कर सकते हैं। और मन में संशय की भावना बनी रहेगी तो निरंतर मन में अपराध चलता रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ऐसे मैं बताता हूं वो तार्किक की कथा की। तार्किक एक गांव में आया और देखने लगा कि बैल है, बैल के गले में घंटी लगी थी और वो चारों तरफ घूम रहा है और पानी निकाल रहा है कुएं से, गुड़ 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 पानी निकल रहा है और टिंग 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 उसका गले में घंटी घूम रहा है। तो तार्किक ने पास में खड़े हुए किसान को देख के पूछा, ये गले में घंटी क्यों लगाया? तो बोला, ये क्या है, बैल काम करता रहेगा तो घंटी बजते रहेगी, मुझे समझ में आएगा काम कर रहा है इसलिए लगा दिया। तार्किक ने कहा, अरे मूर्ख, यदि बैल एक जगह खड़े होकर यूं 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 सिर हिलाए तो भी तो घंटी की आवाज आएगी, तो फिर तू मूर्ख बन जाएगा। किसान ने कहा, ये बैल है, तेरे जैसा तार्किक नहीं है, इसका दिमाग टेढ़ा नहीं चलता, सीधा चलता है, एक बार बोल दिया काम कर तो काम करेगा। लेकिन तार्किक लोगों की खोपड़ी उल्टी रहती है, सीधी बात को लेकर भी घुमाते रहते उसको। तो जो तार्किक होता है वो प्रवचन सुनते समय भी एक उसका पैरेलल प्रोसेसिंग चलता रहता है, ये क्यों कहा ऐसा, कैसे कहा, इसने क्यों कहा, ये कह सकता है क्या, उचित नहीं कहा, दूसरे जगह से मैं रेफरेंस ढूंढता हूं और उसको तोड़ता हूं, शायद गलत ही होगा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है, ये तो मेरे साथ हरे कृष्ण में आया था, हम लोग साथ में महाप्रसाद चुराते थे और यही अभी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ओहो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये तर्क वाली बुद्धि अपराध के साथ हम प्रवचन जब सुनेंगे तो अंदर भागवत नहीं जाता, कुछ और जाता है। तो इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, और बिना श्रद्धा के अपराध युक्त जब हम श्रवण करते हैं तब उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो इस तरह कई परीक्षाएं लेते थे, जैसे भक्तिवेदांत मैनर में थे तो प्रभुपाद कहने लगे अपने शिष्यों को, रात को मुझे नींद नहीं आती क्योंकि एक नल है वो लीक हो रहा है, टप 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 आवाज आती है रात भर, मैं सो नहीं पाता। तो भक्त लोग पूरा जो मैनर था उसका एक एक जितना टैप था सब खोज मार दिए, और जो जो था उसको भी ऐसा टाइट कर दिए कि खोलने भी जाओ तो खुलता नहीं था वो। और फिर अगले दिन प्रभुपाद बोले, अभी भी वो आवाज आ रही है। तो बोले, यार ये हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने जितना टैप था सब बंद कर दिया बुरी तरह से। फिर अगले दिन प्रभुपाद ने कहा, अभी भी वो आवाज आ रही है। तो एक दिन एक भक्त वो मैनर के ग्राउंड में 4 किलोमीटर दूर एक टैप था गार्डन का, वो उसमें से टिप 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 गिर रहा था। तो भक्त ने सोचा, ये तो 4 किलोमीटर दूर है और यहां से आ रहा है आवाज, तो वो तो प्रभुपाद तो नहीं सुन सकते, लेकिन चलो गिर रहा है तो इसको बंद कर देता हूं। बंद कर दिया तो उस दिन रात को प्रभुपाद बोलते, आवाज बंद हो गई, ठीक हो गया। तो भक्त लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, वो इतना दूर वो पानी की बूंद टपक रही है, ये कैसे सुन सकते हैं, ये कैसे संभव है? तो प्रभुपाद कई बार अचिंत्य लीला करते थे और लोगों की जो श्रद्धा थी उसका प्रशिक्षण करते थे। एक और बार प्रभुपाद कार में जा रहे थे और सामने एक ट्रक जा रही थी और ट्रक में पीछे बक्से लगे हुए थे, संतरे के सब चिन्ह लगे बने हुए थे और उस पर ऑरेंज ऑरेंज लिखा हुआ था। तो प्रभुपाद ने, प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद को चला रहे थे गाड़ी और प्रभुपाद को कहा, ऑरेंजेस आर गोइंग इन दिस ट्रक प्रभुपाद, संतरे हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं संतरे नहीं है, दालिम है। भक्त फिर से देखा, ऑरेंज ऑरेंज लिखा हुआ है, फोटो भी बना हुआ है, कलर भी ऑरेंज का ही है। तो नो प्रभुपाद, इट इज ऑरेंज, संतरा है प्रभुपाद, दालिम है। तो यार ये क्या बोल रहे, फिर और गौर से देखा ध्यान से और गाड़ी को और बिल्कुल पास लेके गया, बम्पर टू बम्पर लगा के देखने लगा, क्या यार मैं बराबर देख रहा हूं क्या, अंधा हो गया हूं मैं, ऑरेंज का ही लगा हुआ है चिन्ह और ऑरेंज लिखा हुआ है और ये स्टेट में ऑरेंज ही उगता है मैं जानता हूं। बोले प्रभुपाद, दिस इज ऑरेंज प्रभुपाद, इन दिस स्टेट दे ग्रो ओनली ऑरेंज प्रभुपाद, पोमेग्रेनेट दालिम। तो बोला, अभी बहुत हो गया, गुरु तो है तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलने का। करके गाड़ी भगाया, बोला ओवरटेक करके अब मैं देखता हूं। ओवरटेक करके जब गाड़ी आगे लिया और साइड से देखा तो लास्ट जो रो था वो केवल ऑरेंज का था, बाकी सब दालिम का था। तो देख के भ्रमित हो गए, बाप रे। प्रभुपाद को भी देखने लगे बार बार, बाप रे कौन है आदमी, कौन है ये? तो बहुत मिस्टिक योगी है, पीछे से सब कुछ जान गए। तो इससे ज्यादा प्रभावित हुए। तो कई बार इस तरह प्रभुपाद छोटा मोटा लीला करके बताते हैं कि भक्ति करने पर अपने आप कई शक्ति आ जाती हैं, इसलिए बाकी कई बात मैं बताऊं उसको मान लिया करो, भले अपनी बुद्धि के आधार पर समझ नहीं पाओ कि क्यों बत कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। तो हर बात हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, और इसलिए भक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसको जीवन भर की आदत लग जाती है कि अपने बुद्धि से समझकर जानकर और पूरा परखने के बाद फिर वो करे। तो इसलिए भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि भक्ति अपने बुद्धि की शक्ति पे आगे नहीं चलती। बुद्धि के आधार पर हम शास्त्र समझते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से भिक्षा मांगने पर भगवान जब कृपा करते हैं तब जाकर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि का अपना स्थान है और उसके प्रयोग की आवश्यकता है, लेकिन केवल उसके आधार पर ही यदि हम भक्ति करते रहें तो फिर हम भक्ति के सागर के तट पर ही केवल कुछ बूंदों को छूते रह जाएंगे और भक्ति के महासागर में निमग्न नहीं हो पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमको भिखारी बनने के लिए कोई प्रोत्साहन देता ही नहीं, और भक्ति का अर्थ है कि हमको प्रेम भिखारी बनना है और भगवान से प्रेम की भिक्षा मांगना है, और जीवन भर अपने को भीख मांगने की आदत ही नहीं है। आदत यह है कि पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, नाना प्रकार के स्किल्स जुटाओ और अपना काम खुद कर लो, इसके आधार पर ही हमारा प्रशिक्षण हुआ है। तो भक्ति में भी आते हैं तो हमको लगता है थोड़ा ज्ञान ले लेंगे, किसी से कुछ शिक्षा ले लेंगे, कुछ कलाएं सीख लेंगे और फिर घुस जाएंगे भगवत धाम में अपने बलबूते पे, अपनी शक्ति के आधार पर, और किसी के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली से हमारी चेतना और अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई है, इसलिए अब भक्ति में आने के पश्चात भगवान के सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगना बहुत कठिन होता है, लगभग असंभव होता है। और इसलिए भक्तों के संग में धीरे धीरे उस चेतना को प्रवृत्त करना और उत्पन्न करना सबसे बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से सुशिक्षित व्यक्ति के लिए। और अर्वाचीन मानव समाज में यह धारणा मनुष्य के मस्तिष्क में कूट कूट कर भर दी गई है, इसलिए उस कचड़े को निकालना और फिर इन सब भावनाओं को मन के अंदर प्रविष्ट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए यहां पर इंद्रदेव का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्रदेव के अंदर भी ये सारे ऐश्वर्य थे, ये सब गुण थे, इसलिए उनको भी बृहस्पति के सामने झुकना कई बार बहुत कठिन होता था, और इसलिए अपराध युक्त भावना से वो अपनी भक्ति कर रहे थे। और जब उस भावना के साथ हम भक्ति करेंगे तो भावना कभी वास्तव में अपने आचरण में प्रकट हो जाएगी और तब बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में इंद्रदेव अब बुरी तरह हताश हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, दानवों के द्वारा परास्त हुए हैं। अब ये लोग सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप की कामना करते हुए। ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी उनको क्या सलाह देते हैं और उसके बाद इंद्रदेव क्या करते हैं, हम दोपहर को देखेंगे। तो ये तो इंद्रदेव का पहला अपराध था इस प्रसंग में, लेकिन इतनी जल्दी सुधरेंगे नहीं, और अपराध करेंगे आगे, और वो क्या करेंगे वो हम दोपहर को देखते हैं। श्री प्रभुपाद की What do we do now? तो किसी के कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु। Prabhuji, when we realize that I have engaged in some sense gratificatory activity, then what do you recommend that we should do so that we feel guilty that I have done something wrong? At the same time, we can reform this mentality.
प्रश्न है कि यदि हम इंद्र तृप्ति के कार्य में लगे हैं तो आत्मग्लानि की भावना कैसे पैदा करें जिससे कि हम इस प्रवृत्ति से मुक्त हो सकें और फिर इसका निवारण कर सकें और अपने चरित्र में परिवर्तन भी ला सकें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आत्मग्लानि की भावना ऐसी है कि वास्तव में प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से बद्ध जीव के चित्त में पहले से ही सन्निहित है, इसलिए जैसे ही हम कोई गलत कार्य करते हैं तो परमात्मा की प्रेरणा से वो आत्मग्लानी की भावना जागृत होती है। और कोई भी व्यक्ति जो लज्जा शून्य नहीं होगा, वो वास्तव में इस भावना से ही वो अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। तो प्रश्न यह है कि कई बार ग्लानी की भावना होती है, लेकिन हृदय दौर्बल्य की वजह से, हृदय दौर्बल्य के कारण हम अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाते। तो ऐसी अवस्था में केवल एक ही उपाय है, साधु संग। साधुओं के संग से शक्ति प्राप्त होती है और तब इंद्रियों के वेग को हम दबा सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो इसलिए साधुओं का संग बहुत आवश्यक है, और साधुओं के चरणों का जब हम आश्रय लेते हैं तो साधुओं के संग की शक्ति से इंद्रियों को दमन करने की शक्ति प्राप्त होती है। सो इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ अ डिवोटी एंड ओपन योर हार्ट, देन दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कंट्रोल योर सेंसेस। तो ये इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए बहुत शक्ति लगती है और अपने प्रयास से वो कई बार सफल नहीं हो पाता, तो भक्तों का संग आवश्यक है। सो इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी, यू शुड टेक शेल्टर ऑफ अ डिवोटी। एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आए और अपने सब बहुत सारे समस्या बताने लगे प्रभुपाद को, कि मैं ये इस तरह फलाना फलाना तरीके से नियम तोड़ता हूँ, फलाना स्त्री के साथ मैंने संग किया, इस तरह से गांजा फूका, ये किया वो किया, बहुत सारा अपना अपना जो इंद्र तृप्ति के जो अनुभव थे वो बताने लगे। एक घंटे तक सुना रहे थे और सब डिवोटी चारों तरफ बैठकर सोच रहे, बाप रे क्या है ये आदमी, ये प्रभुपाद के पास आकर क्या क्या अनाप शनाप बोलते जा रहा है, और इसके अनुभव सुन के हम लोगों को आइडिया मिल रहा है, उठ के जाओ यहां से। एक एक करके उठ के जाने लगे और बाकी लोग सोचने, बड़ा पतित आदमी है, इसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं भक्ति में, इतना भक्ति करके भी देखो कैसा निर्लज है। और अंत में जब प्रभुपाद सब कुछ सुन लिए तो प्रभुपाद अंत में सब भक्तों को देख के कहने लगे, देखो हाउ दिस सोल इज स्ट्रगलिंग फॉर कृष्णा, ये आत्मा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कैसा संघर्ष कर रही है देखो। ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण था। तो बड़ा विरले जीव ही कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास भी आरंभ करता है। तो वास्तव में ऐसा प्रयास का श्री गणेश होने के पश्चात अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने तक नाना प्रकार की चुनौतियां बाधाएं आएंगी, उससे साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। आत्मग्लानी की भावना उचित है, लेकिन वो भावना इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने उत्साह को खो बैठें। 11वें स्कंद में श्लोक है, निर्विण आत्मा पयोदित। भगवान कहते हैं उद्धव को कि यदि आप भक्ति करते हुए भी कुछ समस्या आ जाए और कुछ पतन हो जाए, नियम भंग हो जाए, तो ग्लानी होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका भक्ति करने का उत्साह ही समाप्त हो जाए। तो ये माया का प्रभाव है। तो इसलिए यदि कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए आप पदच्युत हो जाओ और कुछ समस्याग्रस्त हो जाओ, तो तुरंत आपको अपना अगला कदम रखना चाहिए भगवान के पास। जो हुआ सो हुआ, उसको भूलकर आगे बढ़ते रहो। यदि उसका ही चिंतन करते रहोगे, अरे मैं कैसे, मेरा पतन हो गया, कैसे समस्या हो गई, कैसे फॉल डाउन हुआ, कैसे फॉलन डिवोटी हूं मैं, तो आप कृष्ण का चिंतन के बदले कैसे पतन हुआ उसका ही चिंतन करते रहोगे, और उसका चिंतन करते करते फिर पतन हो जाएगा, क्योंकि और आइडिया मिलेगा। तो इसलिए जो हो गया सो हुआ, अभी आगे बढ़ो। तो इस तरह यदि हम विचार करके आगे बढ़ेंगे तो समझना चाहिए ये संघर्ष है, बैटल फील्ड अर्थात एक रणभूमि में है। रणभूमि में गोलियां चलती रहती हैं। रणभूमि में युद्ध करते करते यदि कोई अनायास गोली लग गई तो बैठकर वो सैनिक गोली का ही एनालिसिस नहीं करता रहेगा, कौन सी गोली लगी, कहां लगी, किसने मारा, खोजो उसको, हाँ ये यहां पे क्यों लगी गोली, यहां क्यों नहीं लगी, तो फिर वो अपना अस्त्र चलाना भूल जाएगा और 10 गोली और खाएगा। तो जब गोली लगती है तो जो लग गया तो लग गया, अपना बंदूक उठाओ और घुस जाओ आगे, और जो चला रहा है उसको और मारो। तो इस तरह से युद्ध चलता है, नहीं तो हर एक गोली का बैठकर विचार करते रहो, चिंतन करते रहो और वहीं सो जाओ, गोली लग गई, ओह क्यों लग गई, बहुत डिप्रेस हो रहा हूं मैं, मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया, कैसा योद्धा हूं, गोली वाला योद्धा हो गया अभी मैं, अरे अरे पहले तो अभी तक गाली खाया था, अब गोली भी खा गया, सब गोलमाल है। अब मैं इतना परेशान हो रहा हूं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, यही बिस्तर लगा के सो जाता हूं। तो हरे कृष्ण डिवोटी ज्यादा जब एनालिसिस करता है उसका कंक्लूजन सीधा बिस्तर पर ही होता है, और चिंतन कर करके कन करके इतना एनालिसिस करता है, माथा गर्म हो जाता है, कहता है चलो यार बिस्तर लगाओ, अभी कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुचकुंद से मैं अभी इंस्पायर हो रहा हूं, बस बीच में कोई मेरे को जगा देगा तो भस्मीभूत कर दूंगा। तो एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन इतना भी एनालिसिस मत करो कि पैरालिसिस हो जाए, इसको कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। अपना कौन महाराज एक कौन सा एक स्टोरी बताते हैं, कदम कानन महाराज, वो सेंटीपीड, सेंटीपीड मतलब 100 पैर वाला इंसेक्ट, वो डांस करता है बहुत जबरदस्त, 100 अपना पैर लेके यूं 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 यूं, तो उसको देखकर जो मेंढक है उसको बहुत द्वेष होता है, यार ये बहुत नाच रहा है, बहुत नृत्य कर रहा है। तो मेंढक आके सेंटीपीड को बोलता है कि तू अपने 100 पैर के साथ नृत्य तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में जानता है क्या स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा नृत्य कैसे हो रहा है, कौन सा पैर पहले आ रहा है, कौन सा दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, वो जब तक जानोगे नहीं नृत्य करने का क्या लाभ। तो सेंटीपीड भी सर खुजने लगता है, अरे हाँ मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो फिर वो विचार करने लगता है नृत्य के समय, अभी मेरा कौन सा पैर पहले जा रहा है, कौन सा दूसरा आगे जा रहा है, और वो सोचने लगता है तो उसका डांस भंग हो जाता है और उसका डांसिंग नष्ट हो जाता है, बैठ के विचार ही करने लगता है। तो इसलिए विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, लेकिन इतना भी ना करें और इस तरह भी ना करें कि हम वास्तव में अपनी सेवा छोड़ दें और हताश होकर बिल्कुल बैजू बावरा की तरह घूमते रहे, बहुत जो है गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत ही निकृष्ट आदमी हूं, मैं यहां क्यों आ गया, मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, मैं सबसे पतित हूं, सबसे पतित, इतना पतित, इतना पतित कि कोई मेरा स्पर्श करे वो भी पतित हो जाएगा। इसलिए इन सभी भक्तों को बचाने के लिए मैं यहां भक्तों के संग से चला जाता हूं, ये मेरी कृपा है उन पर, इसलिए मैं जा रहा हूं। बोले प्रभु मत जाओ, नहीं नहीं, नहीं आपके भलाई के लिए मैं जा रहा हूं, जो भी करता हूं परोपकार के लिए करता हूं मैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो इस तरह कई भक्तों का दिमाग चलता रहता है, लेकिन ये प्रथम अध्याय गीता में अर्जुन का जो एनालिसिस है उसके समान है। इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो अपनी समस्या है कि हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, जैसे अर्जुन कर रहा था, है कि नहीं। तो अर्जुन भी कृष्ण के रथ पर चढ़ गया था, तो मैं कहता हूं इस्कॉन क्या है, कृष्ण का रथ है। अर्जुन कृष्ण के रथ पर चढ़ के, कृष्ण बिल्कुल हाथ की दूरी पे थे, अर्जुन ऐसे हाथ मारे तो कृष्ण सामने, स्पर्श करे तो कृष्ण, कृष्ण के चेहरे को ऐसे करे तो हाथ में आ जाएगा कृष्ण का चेहरा, इतना निकट कृष्ण। लेकिन अर्जुन की क्या अवस्था, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम, विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानस। अर्जुन का मन शोकाकुल और नेत्र अश्रुपूरित, कृष्ण के रथ पर, कृष्ण के एक फुट की दूरी पर, और हम लोग कहते हैं आप हरे कृष्ण आंदोलन में आ जाओ, इस्कॉन में आ जाओ, यू विल बी हैप्पी, रथ पे चढ़ जाओ सब ठीक हो जाएगा। और हम कहते हैं 10 साल हो गए रथ पे चढ़ के, अभी तक कुछ गड़बड़ पूरा गया नहीं, क्या बात है। केवल रथ पे चढ़ के बैठने पे कुछ नहीं होता, अर्जुन भी रथ के ऊपर चढ़ के बैठा था, लेकिन रथ पे चढ़कर बैठकर ऑब्जर्विंग द आर्मीज चलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो केवल संस्था से जुड़ने से कुछ नहीं होता, रथ पे चढ़ने के पश्चात कृष्ण जैसा आदेश करें उस आदेश के अनुसार कृष्ण की दृष्टि से जब हम सेना को देखें तब जाकर समस्या का समाधान होता है। तो जब हम कृष्ण के आदेश को पालन नहीं करना चाहते तो रथ को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको भी हम उचित मानना चाहते हैं। तो कृष्ण कह रहे अर्जुन को यह सेवा कर, और अर्जुन कह रहा यह सेवा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि हट करके नहीं करना चाहता, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। और अर्जुन 1, 2, 3, 4, 5 कारण बता देते हैं कैसे मैं ये सेवा नहीं कर सकता, और कैसे आप इस तरह मेरे मन के हिसाब से मेरी इच्छा के अनुसार मुझे ये सेवा दीजिए, अब आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं। तो सेवा किस तरह मुझे देनी चाहिए, कौन सी देनी चाहिए, उसके मैं कुछ सुझाव आपको देता हूं, कृष्ण जरा सोच समझ के सेवा देना। तो फिर जब ये सब विचार करने के बाद अर्जुन का मन भ्रमित हो जाता है, तब फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते चलो भाई मैंने अपने हिसाब से मन माने ढंग से बहुत सेवा करने का प्रयास किया, फिर भी कुछ आनंद नहीं आया, अब कृष्ण तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। तब कृष्ण दूसरे अध्याय में आरंभ करते हैं गीता सुनाना। तो हम लोग रथ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरे श्लोक के 7वें अध्याय तक पहुंचने के लिए कई बार 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। पढ़ने में तो 1 साल में पढ़ लेंगे, लेकिन वास्तव में अपने जीवन के आचरण में हम गीता के कौन से श्लोक तक पहुंचे हैं इसका यदि विश्लेषण करें और आंतरिकरण करें तो वास्तव में घबराहट हो जाएगी, पता पड़ेगा अपन तो 1st चैप्टर में घूम रहे हैं, इस्कॉन में आके हो गए कई वर्ष लेकिन घूम रहे अभी तक 1st चैप्टर में ही। तो जब 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक पे आएंगे और कहेंगे शिष्यस्तेम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब फिर कृष्ण आरंभ करेंगे गीता सुनाना, तब जाकर गीता के आधार पर हम रथ पर रहकर भी जीना आरंभ करते हैं, नहीं तो केवल रथ पर बैठने से हम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो वैसे केवल इस्कॉन में प्रवेश करने से भक्ति नहीं मिलती, प्रवेश करने के पश्चात आपकी चेतना और आपका रवैया क्या है यह महत्वपूर्ण है, इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है।
हरे कृष्ण,
टाइम है क्या?
Who he was telling that you know Indra, when he got this realization, he was telling who will be that intelligent person who will take this, you know, all opulence, everything, and that time you told also that's why we should be satisfied with whatever salary we have, but like many times what happens that you know our
that
mind
was my purport it could be wrong,
so his mind gives reason that you know if I earn more I can practice devotional life, you know, more easily I can go to, you know, many places to see temples and others, so that time like how to see this?
So it is not that you should not earn more, there is nothing wrong in that, but simply to be obsessed with that thought which impedes your practice of bhakti, that's not good. To earn money is not wrong, and to have a comfortable lifestyle is not sinful or not bad. So devotee should have money, he should be comfortable, he should practice his lifestyle peacefully, but to be in anxiety about it is not good. So definitely we don't say that you should live like Sudama, you know, not having anything and even whatever you have, you give away. It's not like that. तो भक्त को चाहिए कि उचित प्रयास करने के पश्चात अपना जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन चिंतित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए. यथाशक्ति यथासंभव जो साधन जुटा सकें उससे संतुष्ट होकर भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए. तो कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं अभी पुणे में नहीं, मुझे नौकरी मिल रही है फलाना फलाना शहर में, और वहां जाके मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, मैं वहां जाऊंगा. बस प्रॉब्लम है वहां कोई डिवोटी नहीं, लेकिन मैं हूं, परमात्मा है और बाकी सब ठीक है, और बाकी मैं डिवोटी बना लूंगा. तो कुछ लोग कर पाते हैं इस तरह से, और कुछ लोग उस कुसंग के वेग से प्रभावित होकर फिर भक्ति भी उनकी छूट जाती. तो कई लोग अमेरिका जाते हैं और वहां जाके डिवोटी बनते हैं, और कुछ लोग पहले ही डिवोटी रहते हैं, अमेरिका जाके उनकी भक्ति छूट जाती. तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि किसके साथ क्या होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से भक्तों का संग मिले तो उसका चयन करना चाहिए, न कि केवल धनराशि कमाने के लिए भक्तों का संग छोड़ के यहां वहां भागो. मेन पॉइंट मेरा वही है, कीप योर प्रायोरिटीज करेक्ट, दैट आई शुड ट्राई टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट जस्ट फॉर अर्निंग सम मोर मनी, देन आई शुड रियली इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक अबाउट इट 100 टाइम्स अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट इन्वॉल्व. तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समझना, अन्यथा धन के विरोध में हम लोग नहीं हैं. तो ऐसे मन आपको बहुत सारे अलग अलग उपाय देगा, और आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपके कोलीग्स और आपके जितने साथ के लोग हैं, वो तो एक नौकरी से दूसरे नौकरी छलांग लगाते रहेंगे, और उसको देख के आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से डबल कमाने लगा, अरे अभी ये तो इतना करने लगा और मैं वहीं बैठा हूं, और वो भी आपको ताना मारेगा, तू तो यार हरे कृष्ण में अटका रहेगा, देख मुझे कुछ हरे कृष्ण ने कुछ नहीं, जीवन जीता हूं पूरी तरह, हर प्रकार की अय्याशी करता हूं, और देख कितना आप कमाने लगा, लेकिन तुम फंस गए हरे कृष्ण में, और ये सब गड़बड़ तुम्हारे जीवन में हो रहा है तो हरे कृष्ण की वजह से. छोड़ दे, आजा मेरे साथ, देख दुनिया घुमाऊंगा तुझे, और तुम्हारा मन कहेगा घूम ले घूम ले, थोड़ा घूम के आजा, मजा आएगा. तो आप जिस समाज में रहते हो उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, और इस आयु में आपको लगता है कि चलो कुछ और कुछ और कुछ और, और धीरे धीरे इच्छा बढ़ती चली जाएगी, फंसते चले जाओगे. इसलिए उचित संघ में रहना बहुत आवश्यक है. अब जॉर्ज हैरिसन कितना 24 वर्ष के थे when he got all his millions, he was only 24 years old that time when he was superstar, but he just gave the whole manor, Bhaktivedanta manor donated. Bhaktivedanta manor that time costing millions of pounds. To us samay wahan niyam tha ki you can't sell prop, you can't donate property in that area, you have to sell it. So he sold it to ISKCON for £1 because of the rule, the local municipality rule was that you can't donate, you can't just give as gift deed. So he just sold it. Okay, I am selling £1. So he had money. So even for pushing this mission, we need money. So nobody is against your making money. But you should know that what should be your consciousness. कई बार लोग भक्तों के संग में दिखेंगे नहीं, संडे नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, प्रोग्राम में नहीं आएंगे. बोले क्यों नहीं आ रहे भाई आजकल सत्संग में? क्या है कि अभी मेरा मिशन है, मैं 3-4 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, फिर मंदिर को 2 करोड़ देना चाहता हूं, इसके लिए मैं अभी पूरी तरह संघर्ष में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो आप, मेरा भी मिशन है, सत्संग नहीं आ रहा वो भी स्पिरिचुअल मिशन ही है मेरा, 4 करोड़ कमाने का मिशन है, लेकिन बाद में 2 करोड़ दूंगा, ठीक है ना। इसलिए घड़ी घड़ी फोन मत करते रहो, कहां गए, आए नहीं क्या प्रोग्राम में, चैंटिंग कर रहे हो क्या, सब भूल जाओ, मैं हूं आपके साथ हूं, 4 करोड़ भी आएगा उसमें 2 करोड़ आपको आएगा, ऐसा कहते हैं कई लोग, लेकिन कुछ समय के पश्चात सब कुछ छूट जाता है, उसका 4 करोड़ क्या 4 लाख का नुकसान हो जाता है, फिर वो संघ में आता है उधार लेने के लिए। ओ जरा प्रभु जी ये डिवोटी से जरा लोन दिला दो, वो अपने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था ना, चल रहा है, थोड़ा 4 लाख का लॉस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं, आएगा वो धीरे धीरे आएगा, ये सब मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूं बिना नाम के, तो ऐसा सब होता है कई बार, तो कई बार वो आरंभ होता है स्पिरिचुअल मिशन, लेकिन धीरे धीरे वो खुद का बिजनेस हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है, फिर वो ये न कहने प्रकार बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, इसलिए जिस तरह गाड़ी चल रही चलने दो, और यदि उस तरह करने की अगर औकात नहीं है तो मत कीजिए कुछ। तो अभी हम लोग यहाँ पे कथा को विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।